नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों के लाभ में जाने से बुधवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स 327 अंक चढ़ गया। इससे पहले दो दिन तक सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई थी। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएससी सेंसेक्स 326.98 अंक बढ़कर 54,379.59 अंक पर पहुंच गया, जबकि व्यापक एनएससी निफ्टी 98.2 अंक बढ़कर 16,223.35 अंक पर था। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इंडसइंड बैंक, नेस्ले, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एनटीपीसी और एचडीएफसी बढ़त वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो और टाटा स्टील लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। पिछले कारोबारी सत्र में मंगलवार को 30 शेयरों पर आधारित बीएससी सेंसेक्स 236 अंक यानी 0.43% गिरकर 54,052.61 अंक पर आ गया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 89.55 अंक यानी 0.55% की गिरावट के साथ 16,125.15 अंक पर बंद हुआ। अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग, शंघाई और सियोल लाभ में कारोबार कर रहे थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.16% की बढ़त के साथ $114.88 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को शुद्ध आधार पर 2,393.45 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख और उससे निवेशकों की धारणा मजबूत होने से रुपया बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे बढ़कर 77.52 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी कोषों की निकासी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से रुपये की बढ़त को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.54 पर खुला और आगे बढ़त दर्ज करते हुए 77.52 के भाव पर आ गया, जो पिछले बंद भाव के मुकाबले 5 पैसे की तेजी दर्शाता है। रुपया पिछले सत्र में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 77.57 के स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.06% बढ़कर 101.92 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.20% बढ़कर $114.92 प्रति बैरल के भाव पर था। सरकार ने मंगलवार को चीनी के निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगा दी, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता बढ़ाना और मूल्य वृद्धि को रोकना है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा, चीनी का निर्यात 1 जून 2022 से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। हालांकि इसने कहा कि ये पाबंदी CXL और TRQ के तहत यूरोपीय संघ और अमेरिका को निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगी। CXL और TRQ के तहत इन क्षेत्रों में एक निश्चित मात्रा में चीनी का निर्यात किया जाता है। एक बयान में सरकार ने कहा कि चीनी मौसम 2021 और 22 के दौरान देश में चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए उसने 1 जून से चीनी निर्यात को विनियमित करने का निर्णय लिया है। उसने कहा, सरकार ने चीनी मौसम 2021-22 के दौरान घरेलू उपलब्धता और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से 100 LMT तक चीनी के निर्यात की अनुमति देने का निर्णय लिया है। उसने कहा, DGFT द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 जून 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, चीनी के निर्यात की अनुमति चीनी निदेशालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की विशिष्ट अनुमति के साथ दी जाएगी। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद अपने क्षेत्र में केंद्र की प्रमुख आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के प्रस्ताव पर बुधवार को विचार करेगी, ये जानकारी अधिकारियों ने दी। इस मुद्दे पर नगरपालिका परिषद की बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा, आयुष्मान भारत योजना को NDMC क्षेत्र में लागू करने का प्रस्ताव है, परिषद इस पर कल फैसला ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। बीमा योजना का उद्देश्य इसके लिए पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख रुपए तक मुफ्त और नकदी रहित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराना है। दिल्ली सरकार ने 2020 में घोषणा की कि वो वित्तीय वर्ष 2020-21 से राष्ट्रीय राजधानी में इस योजना को लागू करेगी। आप सरकार ने शुरू में केंद्रीय योजना को लागू करने से इनकार करते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार 10 गुना बड़ी और व्यापक स्वास्थ्य योजना मुहैया करा रही है। दिल्ली नगर निगम ने सभी कर्मचारियों का 1 महीने का वेतन और पेंशन जारी कर दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही कर्मचारियों की बकाया तनख्वाह और पेंशन भी जारी कर दी जाएगी। पुनः एकीकृत दिल्ली नगर निगम रविवार को औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया। IAS अधिकारी अश्विनी कुमार और ज्ञानेश भारती ने क्रमशः नए नगर निकाय के विशेष अधिकारी और आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। MCD ने एक बयान में कहा, दिल्ली नगर निगम ने अपने कर्मचारियों का 1 महीने का वेतन जारी किया है। इसके अतिरिक्त नागरिक एजेंसी ने अपने पेंशन भोगियों को 1 महीने की पेंशन भी जारी की है। निगम ने इसके लिए 432.84 करोड़ रुपए की निधि उपलब्ध कराई है। वेतन और पेंशन जारी करने के बाद कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों ने राहत और खुशी महसूस की। वित्तीय बाधाओं के बावजूद निगम अपने प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बकाए वेतन के साथ साथ अपने पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने का लक्ष्य रखता है। नगर निकाय ने कहा, MCD हमेशा अपने कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।